हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान के भक्तों की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। नागेश्वर शिवालय के प्रांगण में आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय श्री गोवर्धन और स्वयं भगवान श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए कार्तिक मास में पधारे हैं। आज गोपाष्टमी का दिन है। ये शुक्ल अष्टमी, शुक्ल का मतलब ब्राइट फोर्टनाइट, चांद की अष्टमी का आज दिन है। और गोवर्धन का मतलब है गाय को, गायों को जो सुख दे उसको गोवर्धन बोलते हैं। गो मतलब गाय और वर्धन मतलब उसको बढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, चरने के लिए, घूमने के लिए जल पानी घास आदि दे उसको गोवर्धन बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को गोपाल बोलते हैं, जो गाय को सुख देता है गोवर्धन, उन गायों की पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपाल। तो गोपाल नाम भगवान का उस दिन पड़ा, आज के दिन जब भगवान 5 साल की उम्र पूरी करके 6ठे साल में प्रवेश किया, तो पहले जब छोटे बच्चे थे भगवान 5 साल से छोटे, 5 साल तक, तो गायों के बछड़ों को चराने जाते थे। 5 साल से बड़े हो गए तो गाय चराने का दिन आया। जिस दिन गाय चराने का दिन आया उस दिन को गोप अष्टमी बोलते, और उस दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया गोपाल। उससे पहले कहते थे वत्सपाल, वत्सपाल से कृष्ण गोपाल आज के दिन हुए। बहुत बड़ा उत्सव गोपाष्टमी का आज भी नंदगांव में आज के दिन मनाते हैं। 2 बालकों को सुंदर कृष्ण बलराम का ड्रेसिंग कराते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं। उस वक्त में नंद बाबा ने भागुर ऋषि को मथुरा से बुलाया था। गर्ग आचार्य थे, सांडल्य ऋषि थे, इन सब ऋषियों से पूछा कि कौन सा दिन हमारे बच्चे का गाय चराने के लिए मुहूर्त निकलता है। तो सब ऋषियों ने आज के दिन के लिए कहा, गोपाष्टमी के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है और इस मुहूर्त में ये गाय चराने जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। तो इस दिन से भगवान गाय चराने के लिए, देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान होते हुए इस संसार में बलराम जी के हाथ में क्या है, हल, पिलो, खेती, और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक लाठी है गैया चराने की, लकुटी और एक बांसुरी। दोनों भाई 11 वर्ष तक 3 जगहों पर रहे, गोकुल में बाल लीला, फिर वृंदावन में आए उस लीला को कहते हैं पोंगल लीला। पोंगल 5 साल से आयु शुरू होती है और 10 साल तक, फिर भगवान की अवस्था होती है किशोर लीला। किशोर 10 साल से ऊपर जब भगवान होते हैं 15 साल, सदा के लिए नित्य क्या भगवान की आयु है। श्री कृष्ण 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, 15 साल 15 ईयर्स 9 मंथ 7.5 डे, ये नित्य उनकी उम्र है। इससे बड़े कभी नहीं होते, इसको बोलते हैं किशोर। और किशोरी राधिका 14 साल 7 महीने 15 दिन, 14 ईयर्स 7 मंथ एंड 15 डेज, वो किशोरी राधा की नित्य किशोरी की ये आयु है। तो गोवर्धन पूजा जब हुई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तब श्री कृष्ण 7 साल के थे, तो पहले से गाय चराना शुरू कर दिया था। आज के जन बहुत अद्भुत लीला हुई है, लेकिन अब आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी वो बताएं कि नहीं बताएं। वृंदावन में आज के दिन राधा गोविंद देव जी मंदिर है, राधा गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन में है, जयपुर में है, राधा कुंड पे है, कामेवन में है। वहां आज राधा रानी को गोप के वस्त्र पहनाते हैं, धोती पहनाते हैं और सर के ऊपर पंगड़ी पगड़ी बांधते हैं और उसको कहते हैं सुबल सखा का वेश। सुबल सखा भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है अष्ट, उसमें से एक सखा है सुबल। सुबल की विशेषता क्या है, वो गोरे रंग का है, राधा रानी जैसा उसका रंग है और देखने में भी राधा रानी जैसा लगता है। तो एक दिन की बात है, भैया भगवान जब गैया चराने जाते हैं, कृष्ण बलराम सब गोपों के साथ गाय लेके वन में चराने जाते हैं। गाय भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण के साथ हमेशा गाय का दर्शन होगा। साढ़े दस 10:40 के बाद भगवान श्री कृष्ण 10:40 सब ग्वाल बालों को कहते हैं कि आप अब भोजन करो, लंच का टाइम हुआ है, गायों को चरने के लिए छोड़ो, हम कुछ बछड़ों को ढूंढ के आते हैं। वहां से निकलते हैं, शुभल को साथ लेते हैं, श्रीधामा को साथ लेते हैं, राधा रानी का बड़ा भाई है, और मधुमंगल जो ब्राह्मण सखा है उसको साथ लेते हैं। राधा कुंड पे आते हैं, वहां एक कुंज है, कुंज कहते हैं पेड़ों का बहुत सुंदर एक कमरा जो वृक्षों से बना होता है, ट्रीज से और फ्लावर से डेकोरेटेड होता है, वो उस कुंज का नाम है संकेत कुंज। संकेत का मतलब है इन्फॉर्मेशन किसी को पहले दी हुई है कि यहां मिलेंगे, मीटिंग प्लेस, लेकिन उसका पहले समाचार भेजा जाता है, भाई कल हम पोर्ट लुइस में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, बस स्टैंड के सामने मिलेंगे। तो ऐसे संकेत कुंज, सकेत कुंज जो है वहां कृष्ण जाते हैं और वहां ललिता आदि सखियां राधा रानी आती हैं। और ये मध्यान्ह काल का मतलब 10:40 से लेकर शाम को 3:00 कुछ मिनट तक, ये समय राधा कुंड के ऊपर राधा कृष्ण के मिलन का समय है। एक दिन राधा रानी आई नहीं, समय के ऊपर नहीं पूछी। आज के दिन की लीला है, गोपाष्टमी के दिन के ऊपर श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी आज क्यों नहीं आई, क्या हुआ? उनको आना चाहिए था और उनके मिलना बहुत जरूरी है, उनका क्या करना चाहिए अभी? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अधीर होने लगे और राधा रानी के चिंतन में तब सुबल बोलता है आप चिंता मत करो मैं कोई रास्ता निकालता हूं। सुबल क्या रास्ता निकालता है? सुबल राधा रानी के घर पे जाता है जहां राधा रानी को बंद करके रखा है किसने, जटिला और कुटिला ने, यावत में। जावत गांव का नाम है और जटिला और कुटिला एक सास है और एक ननंद है राधा रानी की, और वो राधा रानी को बंद करके रखा है कि आज कहीं बाहर नहीं जा सकती। जब सुबल वहां पहुंचा तो जटिला बाहर गाय के गोबर के फायर के लिए, घर में आग जलाने के लिए पहले गाय का गोबर होता था उसको थापती थी, बनाती थी। गोबर कैसे बनाते हैं ये भी बहुत बड़ी परंपरा है। गोबर को लेंगे, थोड़ा भूसा लेंगे, उन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर उसको आटे की तरह ऐसे करके फिर उसके बहुत सुंदर ऐसी पेड़ी बना के सुखाएंगे। तो वो तो गोबर पाट रही थी। सुबल कहां जा रहे हो? बोला हमारा छोटा सा एक बछड़ा गुम हो गया है, उसको ढूंढ रहा हूं। हाँ, स्मॉल काफ, कहीं पता नहीं कहां चला गया। अच्छा अच्छा, मिल जाए तो बताना। सुबल सीधा घर में गया, राधा रानी बैठी थी। सुबल आप कैसे यहां? बोला श्री कृष्ण आपको याद कर रहे हैं, आपको वहां होना चाहिए था। बोला मैं कैसे जाऊं, दरवाजा बंद करके मेरे को यहां रख दिया है। सुबल कहता ये मेरे कपड़े पहनो, मैं घर में तुम्हारे कपड़े पहन के बैठता हूं, तुम मेरे कपड़े पहन लो। राधा रानी ने एकदम पगड़ी बांध ली और धोती पहन ली, बांसुरी यहां अटका दी, लाठू हाथ में उठा ली। सुबल कहता अब तो राधा रानी कहती है सुबल को, सुबल कहता है राधा रानी को अब तो आप बिल्कुल सुबल लग रहे हो, लेकिन एक चीज का अंतर है हम में और आप में। राधा रानी और सुबल में क्या अंतर है? कपड़े में बदल गए, लगता सुबल है। राधा रानी तो स्त्री है, उसका छाती तो डिफरेंस है, फिर क्या करना चाहिए? राधा रानी बोलते अब कैसे जाऊं बाहर? बोला ये बछड़ा छोटा सा यहां है ना, ये योग में इसको उठा लो ऐसे। अब राधा रानी ने ऐसे बछड़ा, सुबल ने ऐसे बछड़ा, राधा रानी ने ऐसे बछड़ा उठा लिया। अब बछड़ा छाती के ऊपर आ गया और बाहर निकल के राधा रानी जा रही है सुबल के वेश में। जटिला बोलती तुम्हारे को काफ मिल गया? अच्छा, और वहां से जब राधा कुंड पे राधा रानी सुबल के वेश में पहुंची तो कृष्ण कहता सुबल तुम राधा रानी को नहीं लाए? बोला बहुत मुश्किल है लाना, इज वेरी डिफिकल्ट। आज राधा रानी घर से बाहर नहीं आ सकती है। सुबल फिर मैं क्या करूं? बोला वो दूसरी कुंज है सामने चंद्रावली की, चंद्रावली का नाम तो नहीं लिया, सामने दूसरी सखियों की कुंज है, वहां चले। नहीं नहीं, मैं तो राधा रानी के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। आप कैसे राधा रानी? नहीं बोला मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। जब राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण सवाय राधा रानी के और कोई नाम सुनने को तैयार नहीं है, और कृष्ण तो सुबल को सखा समझ के उसको आलिंगन करके जा, बोला आज के दिन कैसे हम मिलेंगे राधा रानी से। और उस वक्त सुबल के वेश में राधा रानी प्रकट हुई और सुबल वहां बैठा था घर पे। तो इसलिए अभी तक राधा गोविंद मंदिर में आज के दिन राधा रानी को गोप वेश पहनाते हैं और एक बछड़ा छोटा सा, जैसे आपने गाय ऊपर रखी है ऐसी, वैसे ऐसे बछड़ा उसके गोद में ऐसे दे देते हैं। आज के दिन उस मंदिर का दर्शन करने सब लोग जाते हैं। तो राधा रानी के सुबल सखा वेश का आज का दिन है, गोप अष्टमी के दिन। 6 साल के भगवान जब हुए, 6 साल के भगवान तो हुए जब अब जन्माष्टमी हुई तब, लेकिन ये 2 महीने के बाद कार्तिक की अष्टमी को पहली बार पूजा करके गाय चराने के लिए जा रहे। जब गाय चराने जाते हैं तो घर से बहुत दूर जाना जा पड़ता है। पहली बार कृष्ण बलराम घर से बहुत दूर गायों के पीछे जा रहे हैं। आगे गाय जा रही है और पीछे गोपाल जा रहा है उनको चराने के लिए। आज गोपियों ने कहा कृष्ण को सारा दिन दही नहीं देख पाएंगे, गोप और गोपियां कृष्ण के पीछे चले, आगे गाय, पीछे गोपाल, उसके पीछे गोपियां। गो गाय गोपाल की जय बोलते हैं, गो गाय गोपाल, गो गोपाल गोपी गोप सबकी जय। अब जब जंगल में गए आगे गाय चराने, तो जंगल में तो मिट्टी भी है, गाय का गोबर भी है, तो ग्वाल बालू ने तो अपनी धोती घुटने से ऊपर कर ली, जैसे काम करते हुए धोती को ऊपर कर लिया। अब पीछे गोपियां आ रही हैं, वो क्या करें, अपना जो घराड़ा पहना है उसको कैसे ऊपर करेंगे, तो गोबर लग जाएगा, गोबर लग जाएगा, घर में वापस जाएंगी कि ये कहां गोबर कहां से लग गया, किधर गए थे, मिट्टी से कैसे हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो दोनों हाथों से थोड़ा सा ऐसे ऊपर करती है, तो आज के दिन राजा रानी के चरण दर्शन होते हैं, ऐसे गोपियों के चरण दर्शन होते हैं, क्योंकि कृष्ण के पीछे जाने के लिए बाहर जब वन में जाती हैं तो कपड़े को ऊपर करना पड़ता है, ताकि नीचे बहुत सुंदर जो उनका घाघरा होता है वो उसके ऊपर जरी लगी हुई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, वो तो मिट्टी और मट में खराब न हो जाए, वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो आज चरण दर्शन होता है राजा रानी और गोपियों का, आज के दिन इस गोपाष्टमी के दिन। माँ यशोदा कहती है कितने दूर जाओगे बेटा, मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, इसलिए आप सामने टेर कदम से दूर मत जाना। एक स्थान है 2 किलोमीटर की दूरी पे नंदगांव से, इसको टेर कदम बोलते हैं, कदम का पेड़ है, लेकिन बहुत से पेड़ कदम के थे तो उसको बोलते थे टेर कदम। आज जब उत्सव होगा तो जब राधा जब दो लड़कों को कृष्ण बलराम बनाएंगे, तब पहले ऊपर नंदगांव में जहां मंदिर है, जहां नंद बाबा यशोदा और कृष्ण बलराम हैं, वहां सब बैठेंगे, ब्राह्मण समाज आएगा और कुछ गाएंगे गोप लीला के विषय में। जब गाएंगे गुलाल उड़ाएंगे, फिर दो आदमी कृष्ण बलराम को कंधे के ऊपर उठाएंगे और वहां से दौड़ेंगे, सब लोग साथ जाएंगे गौशाला में, जाएंगे नंद बाबा की गौशाला में, और गौशाला के होते हुए नंदगांव से सब जाएंगे टेर कदम। टेर कदम में एक आसन बना हुआ है भगवान का, उसके ऊपर कृष्ण बलराम बैठेंगे, फिर सब लोग लाएंगे कुछ खिलाने के लिए उनको, जैसे आपने यहाँ वहां प्रसाद बनाया ना, कोई लड्डू लाएगा, कोई आए कृष्ण को खिलाएंगे, एक खिलाएगा और कृष्ण के साथ ही दूसरा ऐसे छीन के उसके मुंह से ले लेगा, जो गिरेगा किसको मिलेगा उसको महाप्रसाद मानते हैं। बहुत 2 साल हम उसको देखने गए थे, बहुत बड़ा उत्सव होता है उस जगह पे टेर कदम पे, जहां भगवान के बैठने का आसन है। तो माँ ने कह दिया यहां से बेटा आगे मत जाना, यहां से आपकी देखती मैं रहूंगी, आप टेर कदम पे रहना। अब यहां टेर कदम के ऊपर भगवान गाय चला के जब वापस शाम को लौटते हैं, तो श्री कृष्ण के हाथ में एक माला है, भक्तों के हाथ में एक माला है ना, आप सबके पास माला है कि नहीं है, हाँ सबके पास माला नहीं है, माता जी लोग क्यों, अरे ये तो सबके पास होनी चाहिए माला, सबके पास होनी चाहिए, हर एक के पास भगवान का नाम जपने के लिए माला होनी चाहिए, मानव जन्म मिला है तो माला जरूर होनी चाहिए, एक छोटी सी माला गले में होनी चाहिए और एक माला जपने के लिए हाथ में होनी चाहिए, ये 2 माला नहीं है तो मानव जन्म में आदमी अपना टाइम खराब कर रहा है। जिसको समझ नहीं है उनको सीख लेना चाहिए, माला सबके पास इतनी जरूरी है जितनी आपके घर में झाड़ू जरूरी है। आपके घर में झाड़ू है सबके घर में, हाँ क्यों भाई बताओ, एवरी हाउस हैज ब्रून है कि नहीं है, आपका ब्रून भी स्पेशल होता है, छोटा सा इतना होता है और यहां उसमें डालते हैं, लंबा वाला ब्रून भी नहीं है, छोटा वाला है, तो क्यों रखते हैं झाड़ू घर में, हाँ माँ झाड़ू क्यों रखती है घर में, सफाई करने के लिए ना, घर की सफाई होनी चाहिए ना, कचरा घर में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो अंदर भगवान का घर है, दिल इसमें कचरा पड़ा है वो कैसे साफ करोगे, दिल के अंदर काम क्रोध लोभ दूसरे की बुराई करने का कचरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सबकी दिल में कचरा है कि नहीं है, हाँ जी, तो इसको साफ कैसे करेंगे, इसके लिए कौन सा झाड़ू है, ये माला इसका झाड़ू है, सब घर में झाड़ू की जरूरत है, तो सब आदमी को दिल साफ करने के लिए माला निश्चित रूप से लेनी चाहिए और गले की माला जिसके गले में डाली होती है, जमराज ने कह दिया है अपने जमदूतों को, जिसके गले में तुलसी की कंठी माला है और जिसको यहाँ ऊर्द पुंड तिलक लगा हुआ है, उसके निकट कभी मत जाना, वो हमारे अधिकार से मुक्त हो जाएगा, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। सबको ये होना चाहिए, कम से कम भारत संस्कृति में जिसका जन्म हुआ है, वैदिक संस्कृति में, उसको तो ये पहले दिन से समझ होनी चाहिए थी। पहले यही तो सिखाया जाता था गुरुकुल में बच्चों को, और घरों में दादा दादी यही बच्चों को सिखाते थे। हरे कृष्णा। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे बॉम्बे में जुहू बीच पे भक्तों के साथ घूमने, तो सामने से एक कुत्ता देखा, तो सबको पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डॉग एंड दैट डॉग। दो कुत्ते जा रहे थे, तो उनके साथ काफी अंग्रेज भक्त थे जो विदेशी अमेरिकन, तो वो देखने लगे ये कौन सा है, जर्मन शेफर है, ये कौन सा डॉग है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करने लगे ये कौन सा है वो कौन सा है। प्रभुपाद ने कहा दोनों कुत्तों में क्या अंतर है, कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा अंतर देखो एक है, एक कुत्ते के गले में पट्टा है और दूसरे के गले में पट्टा नहीं है, एक कुत्ते के गले में बेल्ट है और दूसरे में बेल्ट नहीं है। बोला हाँ। बोला ये डिफरेंस है। बोला ये डिफरेंस क्या होता है। बोला जिसके गले में बेल्ट है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझेगा इसका कोई मालिक है। बेल्ट वाले कुत्ते का कोई मालिक होता है ना, और बगैर बेल्ट वाले को म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा के जाएगी और मार देगी कि ये रोड के ऊपर कुत्ता परेशानी कर रहा है। और फिर प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही जिसके गले में ये कंठी माला है उसका कोई मालिक है, इसलिए उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, और जो कंठी माला नहीं है उसको यमराज की गाड़ी आएगी और उठा के जाएगी। म्युनिसिपल की गाड़ी कुत्ते को उठाती है और यमराज की गाड़ी बगैर कंठी वाले को उठा के जाती है। इसलिए ये दो चीजें आज गोवर्धन की पूजा में आप याद कर लो, कंठी माला और भगवान का नम नाम जपने के लिए माला हृदय को पवित्र करती है। मन पवित्र हरि नाम लिए, तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर कैसे पवित्र होगा जब सेवा करेंगे। देखो ये इतना सारा ये गोवर्धन बनाने के लिए 25-50 भक्त कल रात से लगे होंगे, परसों से लगे होंगे, लगे थे कि नहीं लगेंगे, सेवा की होगी ना, भगवान की सेवा होगी ना, ये शरीर को पवित्र करता है। धन पवित्र दियो दान, धन कब पवित्र होता है, जब भगवान की सेवा में दान दिया जाता है। जैसे ये गोवर्धन पर्वत में प्रसाद बना हुआ है, वो बूंदी का पहाड़ है, हलवे का पहाड़ है, और ये सब किसी ने दान दिया है तब बना है ना, और फिर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है ना, अब सबके लिए भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्था है, ये भी तो किसी ने दान दिया है ना, तो दान देने से धन पवित्र होता है। आपके यहाँ छत के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम रखते हैं मॉरिशस में, छत पहले तो टेढ़ी छतें होती है, फिर भी कोई छत के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो परनाला बोलते हैं, परनाला बोलते क्या बोलते हैं, लगाते हैं यहाँ फ्लैट जहां रूफ है तो ड्रेनेज के लिए कहीं पाइप लगाते हैं कि नहीं, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इतना बड़ा छत है, रूफ इतनी बड़ी है और इतना छोटा होल उसमें बनाते हैं पानी बहने के लिए, क्यों? नहीं तो छत गिर जाएगी, छत के ऊपर बरसात का पानी आएगा, छत दब जाएगी, इतना छोटा सोराख पानी बह जाता है, छत नहीं गिरती। ऐसे धन आदमी को दबा के नीचे गिरा देगा अगर उसके अंदर थोड़ा दान देने का प्रणाला नहीं होगा, थोड़ा सोराख होना चाहिए कहीं से दान निकालने का, नहीं होगा तो दब जाएगा। छत को बरसात से बचाने के लिए और आदमी को धन से बचाने के लिए कुछ परनाला होना चाहिए, सोराख होना चाहिए बाहर निकले। ये उत्सव इसलिए बनाए जाते हैं भगवान की सेवा के लिए कि हम धन पवित्र दियो दान, मन पवित्र हरि नाम लियो। मन कब पवित्र होता है, जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण मंत्र कोई किसी आदमी का नहीं है, ये वेदों के अंदर से निकला हुआ मंत्र है। इस मंत्र का आदेश जिसने सबको जन्म दिया है ब्रह्मा जी, जो सबका पिता है, पर पिता है ब्रह्मा जी, उसका ये आदेश है। बुद्धिमान संतान वो है जो माता पिता का आदेश मानता है। माता वेद का आदेश है और पिता ब्रह्मा जी का आदेश है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, कलयुग के लोगों का भला कब होगा, जब ये 16 अक्षर का मंत्र जपेंगे। ये ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कली कलमश नाशनम। सारे वेदों को मैंने ढूंढ के देखा है, ये चार नाम, ये 16 अक्षर जो हैं, 16 वर्ड्स, ये कलयुग के सारे दुख ताप संताप कष्ट को नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा इनको जपने का तरीका, बोला कभी भी कोई भी कहीं भी जप सकता है, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो कहीं का भी रहने वाला हो, दिन में रात में उठते बैठते खाते पीते कभी भी जप सकता है। इस मंत्र को जपने के लिए कोई नियम भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश है। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में जब भागवत का अंतिम श्लोक लिखते हैं तब कहते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन सब पापों को नाश कर देता है और सारे वेदों का ये सार है, इसलिए भगवान हरि को प्रणाम करते हैं। और परीक्षित महाराज ने जब ये पूछा था कि कलयुग में इतने सारे दुख हैं, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, लोग बहुत बड़े परेशान होंगे कलयुग में, उनका सुख उसको कैसे सुखी किया जाए, उनको दुख से कैसे बचाया जाए, तो सुखदेव महाराज के मुख से व्यासदेव का बेटा सुखदेव, व्यासदेव वेदों का विस्तार करने वाला उसका बेटा सुखदेव अपने मुख से ये शब्द महाराज परीक्षित इस धरती के राजा को कह रहा है। कलेर दोषे निधे राजन, महाराज कलयुग तो दोषों का सागर है। एक दिन बच गया था परीक्षित महाराज के, 7 दिन पूरे हुए थे, 7 दिन के कुछ घंटे बचे थे, कुछ घंटों के बाद परीक्षित महाराज को शरीर त्यागना था, उनकी जीवन समाप्त होने वाली थी। जब सुखदेव महाराज ने कहा कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, महाराज परीक्षित का चेहरा उतर गया, बहुत दुखी हुए। सागर को कौन तैर के पार कर सकता है, यहाँ आपके चारों ओर सागर है, इसमें तैरने तो जाते हैं लोग, स्विमिंग करने जाते हैं, कोई इस सागर को यहाँ से स्विम करके इंडिया पहुंचेगा क्या, आदमी सागर में स्विमिंग कर सकता है, पार हो जाएगा कहीं, नहीं हो सकता ना। तो कलयुग के सागर को कैसे कोई पार करेगा, तो बहुत बड़ी दुख की बात। परीक्षित के चेहरे के ऊपर दुख को देखा सुखदेव महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, अस्ति एको महागुण, कलयुग में एक महान गुण है, सागर को पार करने के लिए बहुत बड़ा एक शिप है, एक बहुत बड़ा महागुण है, जल्दी बताओ महाराज सुखदेव, जल्दी बताओ, मेरा जीवन थोड़ा बचा है, मैं राजा हूं, मैं आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करूंगा तो प्रजा ग्रहण करेगा। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवत्रो जनः, जो बड़ा आदमी काम करता है छोटा वैसे ही करते। अब दुनिया के अंदर बड़ा आदमी अमेरिका छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया ने कपड़े छोटे कर दिए, बड़ा आदमी छोटे कपड़े, सारे आदमी छोटे कपड़े, हा? तो बड़ा आदमी बुरा काम करता है सब बुरा काम करते हैं, बड़ा आदमी अच्छा काम करता है सब अच्छा काम करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं राजा हूं, आप जल्दी बताइए, मैं उसको पालन करूंगा तो सबका भला होगा। तो सुखदेव महाराज के मुख से निकला कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, नाम लेकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग, दुनिया के बंधन से कृष्ण का कीर्तन आपको मुक्त कर देगा। और परम ब्रजेता, पकड़ के भगवान के परम धाम ब्रज तक ले जाएगा। तो आप मॉरिशस वासियों को वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की भागवत का ये संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण नाम का कीर्तन और श्री कृष्ण नाम का जप माला के ऊपर सबको करना चाहिए। कोई घर कोई आदमी इससे खाली नहीं होना चाहिए। ये आज भगवान श्री गोवर्धन के सामने आप अपने मन में ऐसे विचार करो कि ये काम हमको करना चाहिए। बाकी सब काम करके कई लोग आए आए गए संसार से, मर के बेकार अपना जीवन व्यर्थ गंवा के चले गए। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी कर रहे हैं। मानवता में, मानव में कौन सी बड़ी बात है? इंसान को सबसे उत्तम क्यों कहते हैं? मानव की बढ़ाई ये है धर्म अधिको विशेष, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है। तो हमको धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन धर्म कौन सा? धर्म तो एक ही है जो भगवान देता है। धर्मात साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान ने दिया है। और ये भगवान धर्म में कह रहे हैं, भगवान की ये शिक्षा है, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कैसे मेरे आपके भक्त बने? मेरी पूजा करो। ये भगवान की पूजा कर रहे, ये आप भक्त बन गए। आज आपने भगवान, भगवान गोवर्धन नाथ की और भगवान और भगवान के भक्त गोवर्धन की पूजा की, आप भक्त बन गए। अभी आपने कीर्तन किया, आपका मन इस वक्त भगवान के इस रूप में लगा हुआ है। ये मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, आप सब इसको प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये भक्त बनने का साधन है। तो भक्त बन गए, भगवान की इच्छा है हम सब लोग भक्त बने और वापस भगवान के पास जाएं, संसार में न भटकें, जन्म मृत्यु के चक्कर में दुख न भोगें, ये भगवान की इच्छा है और भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की इच्छा है। भगवान इतने प्रयास करके घर में आपको नहीं आके कहेगा कभी से ये नागेश्वर भोलेनाथ यहां से निकल के आपके घर कभी आया है क्या कि चलो मंदिर में आया है कभी? हाँ जी, आपके घर में नागेश्वर महादेव आया था माता जी के मेरे मंदिर में आया करो, आया था कभी? नहीं आया ना। लेकिन भक्त आते हैं आपके घर में कि आओ हरे कृष्ण बोलो आ जाओ, आते हैं ना। भगवान से भक्त ज्यादा दयालु होते हैं, वो कैसे भी करके भगवान के पास ले जाने के लिए आपके लिए बहुत बड़ी प्रयास और सेवा करते हैं। और ये भक्तों का विशेष रूप से भगवान ने भक्तों को ये सेवा दी है कि लोगों को भगवान के पास ले आए। जो सबसे ज्यादा भक्तों को भगवान के पास ले जाता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान के पास ले जाने के लिए भगवान की शिक्षा श्री भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, श्रीमद भागवत को सीखना चाहिए। ये श्रीमद भागवत के अंदर पूरा एक अध्याय है गोवर्धन पूजा का, एक अध्याय पूरा श्रीमद भागवत के दसम स्कंद के ऊपर है। और उससे पहले 21वें अध्याय में भगवान के जो सबसे परम भक्त है, भगवान की गोपियां, वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रशंसा करती हुई कहती है, ये अद्री गिरिराज, ये हरिदास वर्य है, ये भगवान के भक्तों में सबसे महान है। गिरिराज भगवान के भक्तों में सबसे महान है। बोला क्यों? बोला जब जब भगवान के चरण इसको छूते हैं, ये आनंद में प्रमोदित हो जाता है। और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर के ऊपर पांव रखा, गिरिराज के पदर पिघल गया, मोम बटर जैसा हो गया और भगवान के पांव के निशान उसके ऊपर छप गए। कभी भगवान आपको मौका दे तो कमदगिरी चित्रकूट में एक पर्वत है, 5 किलोमीटर का परिक्रमा है उसकी, एक स्थान है जहां भरत और राम जी मिले थे, जहां राम और भरत मिले थे वहां इतना उनका प्रेम देखकर पत्थर पिघल गए हैं और पत्थर के ऊपर राम जी और भरत के चरणों के इतने लंबे लंबे त्रेता युग के 12 इंच 12 इंच के पांव के निशान पड़े, आज भी जाके देखे जा सकते हैं। पत्थर पिघल जाता था गोवर्धन का जब श्री कृष्ण उसके ऊपर अपने चरण का स्पर्श करते थे। गायों को और ग्वाल बालों को पानी और गायों को घास फल फूल सुंदर से इसके अंदर केव्स हैं, ठंडी गर्मी में बहुत एसी जैसी ठंडी एयर कंडीशन हो जाती है और सर्दियों में बहुत वार्म होती है, ऐसे गोवर्धन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करता है। इसलिए आज गोपाष्टमी के दिन तीन और महात्माओं का भी आज तिरुभाव तिथि है, गदाधर दास गोस्वामी, धनंजय पंडित और श्रीनिवास आचार्य का। ये महात्मा सब आज हम सबके ऊपर कृपा करें कि हम भगवान का नाम लेना शुरू करें, अपने जीवन को आज से शुरू करें, अभी भी देर नहीं हुई है। एक छोटी सी एक कथा बता के बात को समाप्त करते हैं। एक आदमी 60-62 साल का था, 62 इयर्स का, उसकी 5-7 फैक्ट्रियां थी, 10-12 गाड़ियां थी, 3 बेटे थे, बहुत धन दौलत था, लेकिन साधु संघ में उसको कुछ समझ में आया। तो एक दिन उससे मानो हमने पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी होगी, तो बोलने लगा 7 साल। अरे 62 साल का, 62 इयर्स का है, बोलता है 7 ईयर का हूं। आप मेरे को पूछे आपकी उम्र कितना है, मैं कहूं कि 6 इयर्स, आप क्या समझेंगे, हंसी आएगी ना। बोला बाबा आपका प्रॉपर्टी कितनी है, मिल्कियत कितनी है, धन? बोला 8-9 हजार होगा, 8-9 थाउजेंड। ये 7 फैक्ट्रियां हैं, 5-7 गाड़ियां हैं, वो 8-7 बंगले है, बोलता है 7-8 थाउजेंड। झूठ क्यों बोलता है बाबा? तुम्हारे बेटे कितने, तुम्हारा संतान? बोला 1 बेटा है। अरे 3 तो हम जानते हैं आपके बेटे। किसी ने पूछा, बाबा झूठ क्यों बोलता है? किसी ने बोला, मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। सच कैसे बोल रहे? बोला सच ऐसे बोल रहा हूं, सुनो, 62 ईयर शरीर के तो हो गए हैं, लेकिन मैंने साधुओं के संग में 7 साल से ही भगवान का नाम लेना शुरू किया है, यही मेरी उम्र काम की है, बाकी तो बेकार में चली गई। इसलिए द्वेज बोलते हैं, द्वेज का मतलब दूसरा जन्म जिसका हो, मां बाप से सबका जन्म होता है, लेकिन गुरु से और शास्त्र की शिक्षा से जब दूसरा जन्म होता है उसको बोलते हैं द्वेज, और तब से वो भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। पुराने जमाने में वैदिक काल में ये जनेऊ डालते थे, मालूम है ना, ये जनेऊ डालते थे, कब डालते थे, जब बच्चा गुरु के पास पढ़ने जाता था तब उसको पहले संध्या वंदन सिखाते थे, तो समझते कि इसका दूसरा जन्म हुआ, उसको दूसरा जन्म कहते थे। अरे बाबा फिर तुम धन इतना सारा फैक्ट्री है, बोलते हैं 9,000 है। बोला मैंने अपने हाथ से 9,000 भगवान की सेवा में दिया है, यही मेरे काम आएगा, बाकी तो यहाँ आपस में लोग लड़ मरेंगे, कोई खा जाएगा, कोई चुरा जाएगा, सरकार ले जाएगी कि बच्चे उड़ाएंगे, कुछ मालूम नहीं, कोई शराब पिएगा कि किसी का क्या करेगा, मुझे क्या पता। बोला 3 बेटे तुम्हारे हैं, 1 क्यों बता रहे हो? बोला 1 मेरी सेवा करते हैं, 2 इंतजार करते हैं कब मैं मरूं के माल बांटे, असल में 1 ही है जो मेरी सेवा कर रहा है। तो असल में आपकी उम्र तब शुरू होगी जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करें, उससे पहले तो ऐसे ही शरीर था, खा पी के समाप्त हो गया, लेकिन आज से शुरू करेंगे भगवान का नाम लेने तो आज से आपका जन्म शुरू हो जाएगा। कौन सा जन्म? जो भगवान के पास जाने वाला है, नहीं तो कौन सी जोनी में जाएंगे कुछ पता नहीं। और अच्छा भला मानव का जन्म पाया है, यहां से गिर के फिर नीचे जाए कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये मौका मत गंवाइए। और बहुत सुंदर स्थान नागेश्वर शिवालय में बैठे हुए हैं भगवान गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज और गोवर्धन नाथ, भगवान गोवर्धन धारी के चरणों में आप सब लोगों को हम प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान का नाम जपिए, अपना जपन जन्म सफल कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज धरण की, श्री प्रभुपाद की, नागेश्वर महादेव की, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अब गिरिराज गोवर्धन की आरती होगी, भक्त लोग कीर्तन करेंगे, आप सब कीर्तन में भाग लीजिएगा। आगे जैसे भी प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा। हम आप सबका फिर धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण।